समय सार लेक्चर नंबर 684 ओम नमः सिद्धे आचार्य भगवान का समय सार है और इस समय सार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथा 212 और 213 ये दो गाथा हम देख रहे हैं। इसमें ये गाथाएं हमने पढ़ी थी और उसका गाथार्थ भी हमने पढ़ा था। अब हमें केवल टीका पढ़नी और आगे की बात देखनी है। तो मुझे लगता है कि गाथार्थ केवल गुजराती पढ़ते पढ़ते आगे हम बढ़े तो अच्छा है।
312-313 का गाथार देखते हैं गुजराती में।
पेज नंबर है 44।
आवाज है क्या? चेतक अर्थात आत्मा प्रकृति ना निमित्ते इतले कर्म प्रकृति की बात है। ये उपजे छे तथा विनसे छे, ये जो प्रकृति के कारण वो उपजता है और नष्ट होता है ये बात कही है, वो निमित्त का कथन है। क्योंकि पहले ही वो बता चुके हैं कि जीव अपने पर्याय रूप से परिणमता है और अजीव अपने पर्याय रूप से परिणमता है। कैसे पर्याय? क्रम नियमित, वो भी निश्चित है। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं कि चेतक आत्मा प्रकृति ना निमित्ते उपजे छे तथा विनसे छे, अने प्रकृति पण चेतक ना अर्थात आत्मा ना निमित्ते उपजे छे तथा विनसे छे, ए रीते परस्पर निमित्त थी। निमित्त बताया ना, कर्तापना नहीं बताया, निमित्त बताया। बनने नो एटले आत्मानो ने प्रकृति नो बंध थाय छे अने तेथी संसार उत्पन्न थाय छे। ये कर्म और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है और इसी से ये बंध की परंपरा चलती रहती है और इसका संसार भी चलता रहता है। अब ये जो गाथा है उसकी टीका हम पढ़ेंगे। अभी
देखो, हमें पहला रेफरेंस भी थोड़ा भूलना नहीं चाहिए। यहाँ बात तो अज्ञान के महिमा की चल रही है कि महिमा क्यों गा रहे हैं। इस अज्ञानता के कारण यह जीव अनादि काल से जन्म मरण कर रहा है, ये उसके अज्ञान की महिमा है। और वही बात बता रहे हैं कि आत्मा और कर्म ये दोनों ही एक साथ बंधे हुए हैं, उसका मूल कारण अज्ञान है।
यानी अज्ञान है तब तक ये बंधन है और तब तक ये संसार चलता रहेगा। देखो टीका, आ आत्मा तेने अनादि संसार थी, यानी ये जो उसका अज्ञान अनादि से ही चला रहा है तो अनादि संसार थी परना ने पोताना जुदा जुदा निश्चित स्व लक्षणों नु ज्ञान एटले भेद ज्ञान नहीं होवाने लीधे यह जीव अनादि से ही मिथ्यात्व दशा में है, अज्ञान दशा में है। क्यों ऐसा कहा? कि उसको अपना और पर का जो निश्चित स्व लक्षण है उसका पता नहीं है। अपना लक्षण भिन्न है और पर का लक्षण भिन्न है, और लक्षण के द्वारा पदार्थों को पहचाना जाता है। हमें किसी को पहचानना है तो लक्षण के द्वारा पहचानते हैं। तो अपना लक्षण भिन्न है और पर पदार्थ ये शरीर आदि जो है उसका लक्षण भिन्न है, परंतु इस जीव ने उसको कभी अनादि से ही पहचाना नहीं है, तो क्या कर रहा है उसको कि निश्चित स्व लक्षणों ज्ञान एटले भेद ज्ञान नहीं होवाने लीधे, यानी अपना और पर का भिन्न भिन्न लक्षण नहीं जानता है, इस कारण क्या हो रहा है, परना ने पोताना एकत्वनो अध्यास करवाती, मैं स्वयं भिन्न लक्षण वाला और पर पदार्थ जो शरीर आदि पुद्गल वो भिन्न लक्षण वाले है, परंतु इनके लक्षण जब तक नहीं जानता है जीव, कब से ये चला रहा है, अनादि से ही, इसके कारण क्या हो रहा है, ये भिन्न लक्षण नहीं जाने तो दोनों को एक में एक मानता है, तो एकत्व का अध्यास हो गया इसको, स्व और पर में एकत्वपना की बुद्धि हो रही है, अध्यास करवाती कर्ता थयो थको, यह दूसरे का कर्ता अपने को मान रहा है, कर्ता होता हुआ है ने मानता हुआ, और जब तक ये ऐसा कर्ता हो रहा है, उस कर्तापने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रकृति ना निमित्ते उत्पत्ति विनाश पामे छे, यानी कर्म के निमित्त से उसका जन्म मरण चल रहा है, प्रकृति पण आत्माना निमित्ते उत्पत्ति विनाश पामे छे, और ये अज्ञान है, जब तक अज्ञान के कारण होने वाला बंध भी उसका, वो तो बंध नया नया बंध होता रहता है और पुराना पुराना चला जाता है, अर्थात आत्माना परिणाम अनुसार परिणमे छे, कर्म प्रकृतियां जो है आत्मा के परिणाम के अनुसार उनमें भी परिणमन चलता है, कभी हम देखते हैं कभी पुण्य कभी पाप, तो ऐसे अलग अलग प्रकृतियों का भी बंध होगा, उनका उदय चलता रहेगा, फिर भी इसका संसार परिभ्रमण चलता रहेगा, आ रीते ए रीते जो के ते आत्मा ने प्रकृति ने कर्ता कर्म भाव नो अभाव छे, तो पन ये कर्ता कर्म पने का अभाव क्यों कहा, हाँ रश्मि बेन, आत्मा और कर्म को कर्ता कर्म पने का भाव है कि नहीं है, पहले ये नक्की करना, नहीं है, क्यों नहीं है, हाँ बराबर है, बोल, हाँ नहीं, यहाँ हमने क्या पढ़ा था पहली गाथा में, इससे पहली गाथा में हमने पढ़ा था, हाँ प्रेरणा बेट, कर्ता कर्ता कर्म का भाव, देखो कोई भी द्रव्य का कर्ता कर्म भाव किस में घटित, एक द्रव्य का अपने पर्याय के साथ कर्ता कर्म भाव होगा, यहाँ दो भिन्न द्रव्य है, एक आत्मा है और एक प्रकृति है, इसलिए उनमें कर्ता कर्म भाव है नहीं, फिर भी तो कहते अभाव छे तो पण, यानी कर्ता कर्म भाव तो है ही नहीं है, फिर भी परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव थी, एक दूसरे के साथ उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, और उसके कारण बंध जोवामा आवे छे, तेथी संसार छे, अने तेथी ज तेमने एटले आत्माने ने प्रकृति ने कर्ता कर्मनो क्या है वहां व्यवहार छे कहने में आता है, आत्मा ने कर्म बांधा, कर्म को उपशमित किया, कर्म को खिपा दिया, इन्हें उसका क्षय कर दिया, ऐसा व्यवहार होता है, ऐसा उपचार होता है, कर्ता कर्म संबंध या कर्ता कर्म भाव नहीं होने पर भी परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है, इसलिए वहां कर्ता कर्म पने का उपचार होता है, व्यवहार छे भावार्थ, आत्मा ने अने ज्ञानावरणादि कर्मनी प्रकृतियों ने परमार्थे कर्ता कर्म पनानो अभाव छे, परमार्थे ने सच देखा जाए तो, निश्चय से देखा जाए तो, इन रियलिटी क्यों, क्योंकि ये दो परस्पर भिन्न द्रव्य है, तो पण परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव ने लीधे, दो द्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक भाव तो बन सकता है, कर्ता कर्म भाव नहीं बन सकता, तो निमित्त नैमित्तिक भाव ने लीधे बंध थाय छे, तेथी संसार छे, अने तेथी ज कर्ता कर्मपणानो व्यवहार छे, यानी उपचार है, यही बात अभी हम इसमें पढ़ेंगे,
हाँ
प्रवचन में
मथाड़ू, हवे आ ज्ञान ना महिमा ने प्रकट करे छे, यानी ये अज्ञान क्या क्या गुल खिलाता है ये बात बता रहे हैं। कह रहे हैं आ आत्मा तेने अनादि संसार थीज परना ने पोताना जुदा जुदा निश्चित स्वलक्षणों ज्ञान भेद ज्ञान नहीं होवाने लीधे परना ने पोताना एकत्वनो अध्यास करवाथी करता थयो थको प्रकृतिना निमित्ते उत्पत्ति विनाश पामे छे। कौन विनाश पामे छे? आत्मा। कौन उत्पन्न थाय छे? तो आत्मा। क्यार थी? तो अनादि थी। अभी यहाँ क्या कहते हैं, ये आत्मा जो है वो अनादि से क्या हो रहा है, अनादि संसार थीज निश्चित स्वलक्षणों नु ज्ञान नहीं होवाने लीधे, यानी अनादि काल से इस जीव ने ना स्व को जाना है और ना पर को जाना है, इसलिए ना उसे अपने स्व के लक्षण की मालूमात है ना पर के। ऐसा तो होगा ना, स्व को केवल जानता होगा या केवल पर को जानता होगा, उनके लक्षण जानता होगा और स्व का लक्षण नहीं जानता होगा, ऐसा होगा कि नहीं है बेन? अभी पर में अटक रहा है तो पर का लक्षण तो जानता होगा ना वो, है नहीं जानता है? ऐसा कैसा निर्णय ले सकते हैं हम? क्यों नहीं अटकता था? आप कह रहे जान नहीं जानता है, जानता था तो अटकता नहीं था। हाँ हाँ बहुत अच्छा। जो पर है वो मैं नहीं हूं ऐसा उसने जाना ही नहीं है। पर को पर जब कहा जाएगा कि उसको स्व का भी ज्ञान यानी लक्षण का पता होगा और पर के लक्षण का भी पता होगा, लेकिन उसको ना स्व के लक्षण की पहचान है ना पर के पहचान है, इसलिए पर को ही स्व मानकर उसी में अटक रहा है। यानी उसने ना स्व को जाना है ना पर को जाना है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि स्व को तो बराबर जानता है पर को नहीं जानता इसलिए वो स्व समझ के गया, या स्व को बराबर पहचानता है, ऐसा होगा तो स्व पर की तरफ जाएगा नहीं, पर यानी मैं नहीं, ऐसी बात है ना। तो इसलिए कहते हैं एक अनादि से ये बात चल रही है कि उसने पर के और स्व के दोनों के जो खरे खर यानी निश्चित जो कोई स्व लक्षण है उसका उसे भेद ज्ञान नहीं है, दोनों में एकता ही उसने मानी है, भेद माना ही नहीं कभी। इसलिए क्या हो रहा है, भेद नहीं किया इसलिए परना ने आत्माना एकत्वनो अध्यास करवा थी। दूसरी बात क्या की कि स्व को और पर को एक में एक बुद्धि से जाना माना, दोनों बातें। तो कहते हैं परना ने पोताना एकत्वनो अध्यास, अध्यास ने वो एकत्व बुद्धि की। कर्ता थयो थको यानी पर का कर्ता होते हुए उसका क्या हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है और विनाश हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है और विनाश यानी हो? फिर से सोच के बोलना। हाँ जय बहन आप बता रहे, जन्म मरण और किस कारण से, तो निमित्त कौन है, निमित्त कौन है उसमें जन्म मरण में? हाँ जी, अरे 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 भगवान क्या सैंडर्स रोड बया गया तुम्हें है? अभी यहाँ तो यही बात चल रही है कि जीव के जब जो कुछ बातें हो रही उसमें निमित्त कर्म है और कर्म जो में जो उतर पुतल हो रहे हो जीव के परिणाम है, दोनों परस्पर एक दूसरे को निमित्त है ना। देखो ये देखो भावार्थ में दूसरी लाइन में क्या लिखा है, तो पण परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव ने, है ना, एक दूसरे को निमित्त है कोई बात नहीं। क्या मालूम मैं सहज ही देख लेता हूँ तो बराबर कोई मिल जाता है मुझे कि जिसका ध्यान नहीं है। चलो ठीक है, अच्छा है, फिर भी वो बराबर संभल गए। अब क्या कहते देखो, आ आत्मा अंदर मा अनंत गुण थी भरेलो भगवान चेपन, अरे एने अनादि संसार थीज स्व ने परना भिन्न भिन्न सुनिश्चित સ્વલક્ષણોનું જ્ઞાન નથી. પોતાનો તો એક ચૈતન્ય 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 સ્વભાવ છે. ચૈતન્ય એટલે જ્ઞાન દર્શન સ્વરૂપ. અને રાગાદી વિભાવ છે એ તો જડ પ્રકૃતિના લક્ષ્ય થયેલો જડ અચેતન ભાવ છે. દેખો એ રાગ કો ભી અપના ભાવ નહીં હૈ, ઇસલિયે ઉસકો કહા અચેતન હૈ, જડ હૈ. ક્યું એસા ક્યું કહા ગયા ઉસકો જડ હૈ ઓર અચેતન હૈ? હા દિવ્યાબેન, હા એસા શુભ ભાવ કો જડ ઓર અચેતન ક્યું કહા? હા પ્રેરણા બેન, આપ બોલના. હા પુદગલ કહા ઉસકો ક્યું કહા? વિભાવ ભાવ કો ક્યું કહા? ડોક્ટર સાહેબ બતાઈ આપ, એ કહા લિખા હૈ? દેખો દેખો ઇધર લિખા હૈ, એ તો જડ પ્રકૃતિના લક્ષ્ય થયેલો જડ અચેતન ભાવ છે. ભાઈ હમ તો ઇસી મેં પૂછેંગે, કઈ દૂસરી વાત થોડી લાની અપને કો. ક્યા કહા? ये जीव के स्व के तरफ लक्ष्य नहीं है, ये पर के तरफ लक्ष्य है. तो उसके कारण क्या होगा कि जड़ अचेतन भाव उसको कहने में आता है. पर के लक्ष्य से हुआ ना, आम स्वपरनी स्वभाव विभावनी प्रकट भिन्नता छे, पन ए बनने नी भिन्नता नु आने अनादि थी ज भेद ज्ञान नथी. आवो भेद ज्ञान नहीं होवाने लीधे એ સ્વપરના એકપણાનો અધ્યાસ કરીને, એટલે એકત્વ બુદ્ધિ કરીને, વિભાવ ભાવનો કરતા થઈ પ્રકૃતિના નિમિત્તે ઉત્પત્તિ વિનાશ પામે છે. ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય મૂર્તિ પ્રભુ ત્રિકાળ જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી છે. આહા, તેમ છતાં તે વિકૃત રાગાદી ભાવોનો કરતા કેમ થાય છે? તો કહે છે કે ત્રિકાળી શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવ અને વર્તમાન મલિન વિભાવ આ વચ્ચેનું અનાદિથી જ ભેદ જ્ઞાન નહીં હોવાથી, અભી વહા તો ક્યાં કહા કે વો પુદગલ કર્મ પ્રકૃતિ હૈ ઉસકે સાથ ઉસકા ભેદ જ્ઞાન નહીં હૈ. અભી યહાં ઓર એક નઈ બાત બતા દે, સેકન્ડ લાઈન મેં, ત્રિકાળી શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવ અને વર્તમાન મલિન વિભાવ, યાને એ આપણે રાગાદી પરિણામ જો હૈ વો ક્યા હૈ? મલિન ભાવ હૈ, વિભાવ ભાવ હૈ. એ વચ્ચેનું અનાદિથી જ ભેદ જ્ઞાન નહીં હોવાથી અજ્ઞાની જીવ રાગાદી ભાવોનો કરતા થાય છે. ઓર ઉપર રાગાદી કો હી બતાય કે જડ અચેતન ભાવ હૈ, તો ઇસમે દ્રવ્ય કર્મ ઓર ભાવ કર્મ દોનો કો હી પુદગલ મેં ડાલ દિયા ઓર ઉસસે ભેદ જ્ઞાન કરને કી યહાં સિફારસ કી. કર્મના કારણે કરતા થાય છે એમ નહીં, પણ સ્વ અને પર એમ બેઉના એકપણાના અધ્યાસના કારણે અજ્ઞાની જીવ ક્ષણિક વિભાવ પરિણામોનો કરતા થાય છે. એ વિભાવ ભાવ ભી કૈસે હૈ? કુછ કાલ કે લિયે ક્ષણિક હૈ, નષ્ટ હોને વાલે હૈ, ઇનકા ભી વહ કરતા હો જાતા હૈ. ચેદાદુ પયડી અઠમ, અઠમ હૈ ના, ચેદાદુ પયડી અઠમ ઉપજઈ વિનસઈ ચેતઈતા, અર્થાત આત્મા પોતે કર્મ પ્રકૃતિને આધીન થઈને ઉપજે છે તથા વિનસે છે. આહાહા, નિર્વિકાર ચૈતન્ય લક્ષણ પ્રભુ પોતે હોવા છતાં સ્વભાવ વિભાવના ભેદ જ્ઞાનનો અનાદિથી જ અભાવ હોવાથી કર્મ પ્રકૃતિને આધીન થઈને વિકાર રૂપે ઉપજે છે અને વિકાર રૂપે નાશ પામે છે. બીજી રીતે કહીએ તો નિર્વિકાર શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવ ઉપર દ્રષ્ટિ નહીં હોવાથી કર્મના નિમિત્તને આધીન થઈને વિકારનો કરતા થઈને પોતે પરિણમે છે. પોતાના શુદ્ધ એક જ્ઞાતા સ્વભાવને આધીન થઈને સ્વ અવલંબને પરિણમે તો જીવ નિર્વિકારી થાય, એની નિર્મળ વિતરાગી દશા પ્રકટ થાય. યહાં ક્યા બતા રહે હૈ કે અપને સ્વભાવ કો જાનકર ઉસકા અવલંબન લે તો યહ જીવ નિર્વિકારી હોગા ઓર ઇસી કે દ્વારા વહ વિતરાગી હોગા. પણ અરે એને સ્વભાવ વિભાવના એકપણાનો અધ્યાસ થઈ ગયેલો છે, વિકાર મારો છે, હું વિકાર રૂપ છું એમ માનવાની તેને અનાદિતી જ આદત પડેલી છે. તેથી સ્વસ્વભાવની દ્રષ્ટિ રહિત તે પ્રકૃતિ કર્મના નિમિત્તને આધીન થઈને રાગાદી વિકારના કર્તાપને ઉપજે છે ને વિણસે છે. જુઓ, પ્રથમ ચાર ગાથામાં જીવનું અકર્તાપનું સિદ્ધ કર્યું. યા અભી હમને 308 સે લેકે 11 તક પઢા થા, વહાં જીવ સ્વયં પરિણમતા હુઆ જીવ હી હૈ, અજીવ નહીં હૈ, અજીવ ભી અપને પરિણામો સે પરિણમતા હુઆ અજીવ હૈ, જીવ નહીં હૈ. ઇસલે કહા ચાર ગાથામાં જીવનું યાને વહ પર પદાર્થો કા કરતા નહીં હૈ, યે બાત સિદ્ધ કી. અહીં તે રાગાદીનો કરતા કેમ થાય એની વાત કરે છે. આનંદનો નાથ નિર્મળાનંદ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે શુદ્ધ એક ન્યાય સ્વભાવના આશ્રય પરિણમે એ તો મોક્ષનું કારણ છે. પરંતુ સ્વભાવને છોડીને પ્રકૃતિને આધીન થઈને પરિણમે તે વિકારી ભાવનો કરતા થઈ ઉપજે અને વિનસે છે. આહા, શુદ્ધ ઉપાદાનની દ્રષ્ટિ વિના નિમિત્તને પરવસ્તુને આધીન થઈને જે અશુદ્ધ ઉપાદાન રૂપ પરિણમે છે તે અશુદ્ધતાનો એટલે રાગાદી અજ્ઞાનમય પરિણામાનો પરિણામોનો કરતા થાય છે. યહાં ક્યા બતાતે હૈ, જો અજ્ઞાની હૈ, મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવ હૈ, ઉસકે ઉપાદાન સે કાર્ય હોતા હૈ ઇસ બાત પર ભરોસા નહીં. અરે ઉપાદાન ક્યા હોતા હૈ યે ભી માલૂમ નહીં ના, ભરોસા તો તબ આયેગા જબ ઉપાદાન નામ કી કોઈ ચીજ હોતી હો સકતી હૈ હોતી હૈ ઇસ બાત કા જ્ઞાન હોય તો. વહ તો દેખો અજ્ઞાની કી તો બાત હમેશા એસી હી હોગી કે નિમિત્ત સે કાર્ય હુઆ. તો યહાં ક્યા બતા રહે, દેખો દેખો નીચે સી તીસરી લાઈન. આહા હા, શુદ્ધ ઉપાદાનની દ્રષ્ટિ વિના, એ પહેલે મેં પહેલે ભૂલ કરી ઉસને, નિમિત્તને એટલે પરવસ્તુને આધીન થઈને યાને પરવસ્તુ સે હી યે કાર્ય હોતા હૈ ઓર ઉસકા હી હમે આશ્રય લેના ચાહીએ, ઇસલે હમે કોઈ ના કોઈ ગુરુ તો અવશ્ય ચાહીએ. ગુરુ વિના જ્ઞાન નહીં ને, એસા માન રખા હૈ તો નિમિત્ત સે જ્ઞાન હોતા હૈ, એસી બુદ્ધિ હૈ તો ક્યા હો ગયા, તે જીવ અશુદ્ધ ઉપાદાન રૂપે પરિણમે છે જે તે સુખ થાય છે અશુદ્ધતાનો એટલે રાગાદી અજ્ઞાનમય પરિણામોનો કરતા થાય છે. ઓર ઉસે અગર ઇસ બાત કા પતા લગે કે જો કુછ બાત હો રહી હૈ વો અપને ઉપાદાન સે હોતી હૈ, પર સે નહીં હોતી હૈ, પર નિમિત્ત તો હોતા અવશ્ય હૈ, વો નિમિત્ત કો ઉડા દેને કી બાત નહીં હૈ, લેકિન નિમિત્ત સે કાર્ય નહીં હોતા હૈ, ઉપાદાન સે હી કાર્ય હોતા હૈ, તો ઉસકા જો અજ્ઞાનમય ભાવ હૈ વહ પલટકર જ્ઞાનમય ભાવ હો જાયેગા. લોકો દયાદાન વ્રત ભક્તિ પૂજા જાત્રા આદિ શુભરાગના પરિણામથી ધર્મ થવાનું માને છે, પણ એ માન્યતા મિથ્યા છે. કેમ કે એવી માન્યતા તો રાગ સાથે એકપણાના અધ્યાસ વાળી છે. સ્વભાવની રૂચિ અને સ્વભાવ તરફનો ઝુકાવ નહીં હોવાથી અજ્ઞાની જીવ પ્રકૃતિ ઉદય પ્રતિ ઝુકાવ કરીને વિકારપણે એટલે વિકારના એકત્વપણે પરિણમે છે અને તે વિકારનો કર્તા થાય છે. જો કે રાગનો કરતા થાય એવો જીવનો સ્વભાવ નથી, પણ રાગ સાથે એકત્વ બુદ્ધિના કારણે પોતે રાગનો કર્તા થાય છે. એનું ફળ શું છે? તો કે જે દીર્ઘ સંસારનું કારણ છે. જીવમાં એક વૈભાવિક શક્તિ છે. એ વૈભાવિક શક્તિ કા ક્યા કામ હૈ માલુમ હૈ? કિસકો માલુમ હૈ? વિરેશભાઈ આપ જાણતે હૈ? વૈભાવિક શક્તિ હૈ યે ભી તો જાણતે થે. બહુત અચ્છા, જાણતે નહીં હૈ. અચ્છા, કોણ જાણતા હૈ વૈભાવિક શક્તિ કા કાર્ય ક્યા હૈ? નલિનભાઈ આપ બતાએંગે? નહીં માલુમ. અચ્છા, કોઈ વાત નહીં. આપ બેન, વૈભાવિક શક્તિ જો હૈ ઉસકા કાર્ય ક્યા હૈ? વિશેષ ભાવ યે ઉસકી ક્વાલિટી હુઈ, કાર્ય ક્યા હૈ? આપકા કહેના એસા હૈ ત્રિકાલી આત્મા વિભાવ રૂપ નહીં પરિણમતા હૈ, યે વૈભાવિક શક્તિ કા કાર્ય હૈ. અરે વો ત્રિકાલી આત્મા પરિણમતા હી નહીં હૈ ના, તો વિભાવ રૂપ યા સ્વભાવ રૂપ કહાં કહાં કી બાત આઈ? ખ્યાલ મેં? હા, ડોક્ટર સાહેબ આપ કુછ કહેના ચાહતે હૈ? બહુત અચ્છા, ક્યા કહા? કે જીવ મેં જબ જબ વિભાવ રૂપ પરિણતિ હો રહી હૈ તો ઉસમે વહ નિમિત્ત હૈ. જૈસે ઉદાહરણ કે લીએ બતા રહે હૈ કે જૈસે દ્રવ્ય મેં નિરંતર પરિણમન હોના ઉસકા સ્વભાવ હૈ, તો ક્યા હૈ? વહાં દ્રવ્યત્વ ગુણ નિમિત્ત હૈ. ઓર આપ જો કહે રહે ના કે દ્રવ્ય કો વિભાવ રૂપ નહીં પરિણમે, નહીં પરિણમ સકે એસે ઇસ ગુણ કા કાર્ય હૈ, તો ફિર બાકી સબકો છોડ કે જ્ઞાન કો આનંદ કો છોડ કે હમે વિભાવ શક્તિ કી હી પૂજા કરની પડેગી, ક્યોંકિ ઉસસે ભી દ્રવ્ય સબઓર્ડિનેટ હો ગયા. ખ્યાલ મેં આયા? આપ ક્યા કહેના ચાહતે હૈ? દેખો દેખો, યે ગુણ જો હોતા હૈ, કોઈ ભી દ્રવ્ય કા કોઈ ભી ગુણ હમ લેતે હૈ, વો કબ સે કબ તક રહેતા હૈ ઇસ દ્રવ્ય મેં? હમેશા રહેતા, યાને અનાદિ કાલ સે અનંત કાલ તક. યે કૈસા હમને નક્કી કિયા બેન? હા, સ્વરૂપ હૈ, લેકિન યે નક્કી કૈસા કિયા? એસા હમ થોડી કોઈ આંખ પે પાટી બાંધ કે કોઈ સુનેંગે. ગુણ અનાદિ અનંત રહેતા હૈ, યે હમને નક્કી કૈસા કિયા? આપકો કિસને બોલા? કોણ સા? નહીં નહીં, હા આપ બતાએંગે બેન? અસ્તિત્વ આપ કોણ બતાના ચાહેગા? હા, એ આવાજ નહીં નિકાલતી કભી, બહુ હમકો કાન ઉધર તક ભેજના પડતા હૈ. इनका क्या कहना है? अरे भैया, गुण उसी को कहते हैं. किसको किसको साहब? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में, तो क्षेत्र बता रहे, उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में. संपूर्ण अवस्था कब से कब होती है? हाँ, तो उसमें कौन सा सामान्य गुण रहा और कौन सा क्या रहा? कोई बात नहीं, हाँ ख्याल में आए. तो इसके ये बात निश्चित होती है कि द्रव्य और गुण त्रिकाल रहेंगे. ख्याल में आए? अब अपनी क्या बात हो रही है यहां पर कि वैभाविक शक्ति जो है वो गुण है ना एक. हाँ, तो सिद्धों में होगा कि नहीं? तो फिर वहां किस में निमित्त होगा वो? हाँ, क्या बोलते हैं? गुण रहेंगे तो वो अपना अपना रूप से परिणमेंगे. उसमें क्या है? वो तो विभाव रूप परिणमेंगे तो निमित्त होना है, नहीं रहेगा तो नहीं निमित्त होंगे, लेकिन उनका परिणमन तो चलेगा ही. अब आगे तो यहां क्या कह रहे? देखो देखो, જીવમાં એક વૈભાવિક શક્તિ છે, આ શક્તિ ત્રિકાળ છે, લખ્યું છે ને, તો એ ખાલી લિખા હૈ એસા નહીં, હમ પહેલે હમને જો કુછ સીખા હૈ ઉસકે ઉપર હમ તરાશ કે દેખેંગે કે ભાઈ એ બાત સાચી હૈ કે કૈસી હૈ. સિદ્ધ ભગવાનમાં પણ વૈભાવિક શક્તિ છે, સિદ્ધ ભગવાન વિભાવ રૂપે પરિણમતા નથી, વૈભાવિક શક્તિ જીવ અને પૂતગલ બેમાં છે, એ અપેક્ષા એને સામાન્ય ગુણ કહેવાય છે. અને ચાર દ્રવ્યમાં નથી, કેવળ બે દ્રવ્યમાં છે એટલે એને વિશેષ ગુણ પણ કહેવામાં આવે. ઓ એસે અન્ય કોણ સા ગુણ હૈ ક્યા જીસકો સામાન્ય ગુણ ઓર વિશેષ ગુણ દોનો કહેને મેં આયેગા? અરે વાહ, ક્રિયાવતિ શક્તિ, બહુ અચ્છા. શું કીધું? જીવ પૂતગલ બેમાં છે, બાકીના ચાર દ્રવ્યોમાં નથી. જીવ પૂતગલ બેમાં છે માટે તેને વૈભાવિક શક્તિ કહેલ છે. વૈભાવિક શક્તિ વિકાર કરે એવો એનો અર્થ નથી. વિભાવ એટલે વિશેષ ભાવ, એમ અર્થ છે. વૈભાવિક શક્તિ એ આત્માનો સ્વભાવ છે. દેખો કઈ લોગ એસા હી માન લેતે હૈ કે વૈભાવિક શક્તિ વો વિવાહ કરાતા હોગા. અરે વો વિવાહ કરાને કા અગર ઉસકા કાર્ય હૈ તો સિદ્ધો મેં ભી વો વૈસા કાર્ય હોના ચાહિયે. ઇસલિયે ક્યા બતાયે? દેખો દેખો ફિર સે. વૈભાવિક શક્તિ વિકાર કરે છે એવો એનો અર્થ નથી. વિભાવ એટલે વિશેષ ભાવ, વિભાવ એમ અર્થ છે. વૈભાવિક શક્તિ એ આત્માનો સ્વભાવ છે. આવા નિજ સ્વભાવને નહીં જાણતા પરાધીન નિમિત્તાધીન થઈ અજ્ઞાની જીવ વિકારનો કરતા થાય છે. ઓ વૈભાવ શક્તિ કે કારણ નહીં કરે વૈસા હો રહે. જો અહીં શું કહ્યું કે અજ્ઞાની વિકાર ભાવનો કરતા થયો થકો પ્રકૃતિના નિમિત્તે ઉત્પત્તિ વિનાશ પામે છે. મતલબ કે અજ્ઞાની જીવ પોતે કરતા થઈને વિકાર ભાવે ઉપજે છે અને તેમાં પ્રકૃતિ નિમિત્ત છે. પણ નિમિત્ત એટલે કરતા એમ અર્થ નથી. વિકારના પ્રકૃતિના નિમિત્તે થાય છે એ તો છે, પણ પ્રકૃતિ જીવમાં વિકાર કરે કરાવે છે એમ નથી. સૂક્ષ્મ વાત છે ભાઈ. પ્રકૃતિના નિમિત્તને પોતે આધીન થઈને વિકારપણે ઉપજે વિનસે છે, પણ ત્યાં પ્રકૃતિ વિકાર ભાવને ઉત્પન્ન કરે છે, ઉત્પન્ન કે નાશ કરે છે એમ નથી. યાને વો તો પૂતગલ હૈ ને, તો પૂતગલ તો આપણે સ્વચતુષ્ટય મેં પરિણમેગા. વહ જીવ કો વિકાર ભાવ કરાવે એસી બાત નહીં હૈ, એ તો ઉપચાર સે કહેંગે. વિકારપણે ઉપજવું વિનશવું તે અજ્ઞાનીનું કાર્ય અને તેનો અજ્ઞાની કરતા છે. એમાં પ્રકૃતિનું એટલે કર્મનું કાંઈ કર્તવ્ય નથી, એ તો નિમિત્ત માત્ર છે બસ. હવે કહે છે પ્રકૃતિ પણ આત્માના નિમિત્તે ઉત્પત્તિ વિનાશ પામે છે, અર્થાત આત્માના પરિણામ અનુસાર પરિણમે છે. એ રીતે જો કે તે આત્મા અને પ્રકૃતિને કરતા કર્મ ભાવનો અભાવ છે તો પણ પરસ્પર નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવથી બંનેને બંધ જોવામાં આવે છે. તેથી સંસાર છે અને તેથી જ તેમને, એટલે બંનેને ને, આત્માને અને પ્રકૃતિને કરતા કર્મનો વ્યવહાર છે. યાને ઉનકા ભી એક દૂસરે સે નિમિત્ત નૈમિત્તિકપના દેખતે હુએ વો એક દૂસરે કા કાર્ય કરતે હૈ એસા ઉપચાર સે કહેને મેં આતા હૈ, વ્યવહાર છે. એસા વ્યવહાર કભી આપને સુના હૈ? યહાં જો બતા રહે કરતા કર્મ કી બાત. હા પ્રેરણાબેન, બોલો. અરે વાહ, और तुम स्वाध्याय में नहीं आते तो अंतरा कर्म आड़ा नहीं आते, ये बोला जाएगा ऐसा ही। क्या करे साहब, अभी असाता वेदनी कर्म का है, क्यों क्यों, क्यों? अरे गए आप अठवाड़िया से, आज तबियत ही अच्छी नहीं रहती, बहुत आने का मन करता है, लेकिन इतनी शरीर में पीड़ा है, क्या करे, ये वेदनी कर्म है ना, क्या तुम नहीं समझते साहब, हमने पूर्व में बांधे थे अभी भुगतने पड़ते हैं, ऐसा भी बोलते हैं ना, ये व्यवहार लोक व्यवहार है ये, इसलिए कहते हैं एक को कर्ता और एक को कर्म, यानी उसकी क्रिया, कर्ता कर्म संबंध जोड़ दिया, ऐसा उपचार से बोला चाली में चलता है। जो जीव अनेक कर्म प्रकृति ने एक बीजा ने निमित्त निमित्त संबंध छे, पण कर्ता कर्म संबंध नथी, ये असलियत है। धीमे धीमे समझू भाई, आ तो वितराग जैन परमेश्वर नो मार्ग छे बापू। पहला कहूं कि अज्ञानी जीव राग नो कर्ता थयो थको, प्रकृति ना निमित्ते उत्पत्ति विनाश पामे छे। हवे कहे छे जड़ कर्मनी प्रकृति पन आत्माना निमित्ते उत्पत्ति विनाश पामे छे। यानी जड़ कर्म बंधना उसकी उत्पत्ति हो गई, और विनाश जाना वह उसका, उदय में आना वह उसका विनाश ना है। वह जीव के परिणाम के अनुसार होता है। एटले शू कि शू कि हवे कहे छे के जड़ कर्म ने प्रकृति पन आत्माना निमित्ते उत्पत्ति ने विनाश पामे छे, एटले शू के प्रकृति नो जे नवो बंध थाय छे तेमा आत्माना विकारना परिणाम निमित्त छे। आत्माना विकारना परिणाम कर्म प्रकृति नो बंध करे छे एम नथी, जीवना विकारी परिणाम करता अने जड़ कर्म नो जे बंध थाय ते एनु कर्म एम त्रण काळमा नथी। जड़ कर्मनी प्रकृति बंधाय छे ए तो पोतानी पर्यायनी योग्यताथी बंध भावे थाय छे, तेमा आत्माना विकार परिणाम निमित्त छे बस। जेम जीवनी विकारी परिणाम थाय तेमा जूना कर्मनो उदय निमित्त छे, तेम नवी नवी कर्म प्रकृति बंधाय छे तेमा जीवना विकारी परिणाम मात्र निमित्त छे, बस अटली बात छे। अभी जो अरविंद भाई ने बात उठाई थी ना, ये यही बात है, वो ऐसा ही मान रहे थे कि पुराने कर्मों का उदय हो गया और ये जीव फिर वही कर्म बांधता है, वही नहीं नया कर्म बांधता है। और यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ जीव ने विकारी परिणाम किए उसको निमित्त कौन है, पुराने कर्म। अभी यहाँ कार्य कौन सा हुआ कि नए कर्म बंधे, उसमें कौन निमित्त, तो जीव के विकारी परिणाम, यानी जीव को परिणाम को एक बार उपादान से बताया और एक दफे निमित्त तरीके बताया, और क्रिया क्या हुई, पुराने कर्मों का उदय और यहाँ नए कर्मों का बंध, तो वहां पुराने कर्मों का उदय को निमित्त में रखा और जीव के परिणामों को उपादान में रखा, और यहाँ नए कर्मों का बंध उपादान में रखा और जीव के परिणामों को कर्म मतलब निमित्त में डाला। देखो देखो ये नीचे से पांचवी लाइन है, जेम जीव ने विकारी परिणाम थाय तेमा जूना कर्मनो उदय निमित्त छे, हा? तेम नवी नवी कर्म प्रकृति बंधाय छे तेमा जीवनी जीवना विकारी परिणाम मात्र निमित्त छे, बस आटली बात छे। तो उसमें से कंक्लूजन क्या निकाला, एक बीजा ने कर्ता कर्म भाव नथी, फक्त निमित्त नैमित्तिक भाव छे। अहो दिगंबर संतो केवड़ी ना केड़ाईतीओ ए केवड़ी नी दिव्य ध्वनि मां आवेला गंभीर रहस्य जगत समक्ष केवी खूबी थी जाहिर करिया छे। बनारसी विलास मां आवे छे ने के आप पढ़ेंगे,
मुखो मुकार धुनि सुनि अर्थ गण धर विचारे रचियागम उपदेश भविक जीव संशय निवारे सो सत्यारत शारदा तासु भक्ति उरान छंद भुजंग प्रयात में अष्टक कहो बखान।
ये बनारसी विलास यानी बनारसी दास जी ने शारदाष्टक में ये बात लिखी है। शारदा यानी समझते हैं सरस्वती, सरस्वती किसको कहा? जिनवानी को, दिव्य ध्वनि को। देखो लिखा ना, मुख ओंकार धुनि सुनी गर्द अनद अर्थ गणधर विचारे। ये जो जिनेंद्र भगवान की जो दिव्य ध्वनि है उसको सुनकर गणधर ने क्या किया, वो जो उसका अर्थ है उसको समझा। रची आगम उपदेश यानि उनके उपदेश को सुनकर आगम की रचना की, और उससे क्या हो गया, जो भव्य जीव है उन्होंने अपने संशय का निवारण किया, यानी क्या किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया। भाई जिसके संशय था वो हट गया ना, निश्चंक हो गए। सो सत्यारथ शारदा तासु भक्ति उरान। तो ये ऐसे जो सच्चे रूप की जो सरस्वती यानी जिनवानी है उसकी भक्ति अपने मन में उर में आनी चाहिए। और छंद भुजंग प्रयात में अष्टक कहो बखान, ये जो कोई काव्य रचना है उसको भुजंग कहते हैं। भुजंग कुछ होगा, प्रयाति, हाँ वो पूरा नाम वो है भुजंग प्रयात लिखा ना,
शार्दुल विक्रीडित वगैरह होते हैं वैसे भुजंग प्रयात।
तो ये अष्टक कहो बखान यानी अष्टक मैंने रचना की है उनकी स्तुति करने के लिए। ओ संतोए परमामृत रेलाव्या छे अमृत वर्ष्या रे पंचम काल मा, प्रवचन सार मा 47 नयो नो अधिकार छे तेमा ईश्वर ने अने अनिश्वर नयनी वात आवे छे। त्यां कयुं छे के आत्मद्रव्य निश्चय ने, ओ ओ ओ ये ई लिखा ही नहीं और श्व की जगह च जैसा दिख रहा है, क्या लिखा, आत्मद्रव्य ईश्वर ने परतंत्रता भोगवनार छे। और उसका उदाहरण क्या दिया है, धावनी दुकाने दौड़ावामा आवता मुसाफरना बालकनी माफक। क्या कहते हैं तो बताएंगे अभी, आत्म दूसरा आगे पढ़ते हैं। आत्मद्रव्य अनिश्वर ने स्वतंत्रता भोगवनार छे, हरण ने स्वच्छंदे एटले स्वतंत्रपणे पोतानी मर्जी अनुसार फाड़ी खाता सिंहनी माफक। यानी यहाँ क्या बता रहे हैं, आत्मद्रव्य कैसा है तो कहते हैं परतंत्रता भोगवने वाला है। वो तो कैसा, किस कारण, तो कहते ईश्वर ने। ईश्वर ने का अर्थ क्या, उसका कोई ऊपर स्वामी बॉस है, ऐसा भी उसमें एक नया आता है उसका कथन करने वाला है। तो उसके लिए उदाहरण क्या दिया, धावनी दुकाने दौड़ावामा आवता मुसाफरना बाड़कनी माफक। यानी पहले के जमाने में प्रवास करते थे तो एक गांव से दूसरे गांव जाते जाते कई दिन लग जाते थे, लंबा प्रवास हो गए। अब वहां कहां उन्हें दूध मिले, तो ऐसी दुकानें वहां होती थी, छोटे छोटे बच्चों को कोई महिला अपने दूध पिलाते, ऐसा दुकान चलता था। जैसे अभी भी हम, ये तो बालक की बात है, अभी आप जाओ होटल में खाना खाने को तो लाइन में क्यू में खड़ा रहना पड़ता है, वहां उतनी लाइन लगती है। तो वहां बालकों को भी दूध पिलाने में ऐसा समय लगता होगा, तो अब गए और झट से उसको दूध मिला ऐसा नहीं, जब उसका नंबर आवे तो वो तो कैसा परतंत्र हो गया ना, इमीडिएट तो नहीं मिले। तो कहते हैं धावनी दुकाने दौड़ावामा आवता मुसाफरना बालक नहीं भावक। तो वो बालक कैसा है, जिसको हम कहेंगे निराधार है, उसको कोई अपने से कोई मतलब जब चाहे जब चीज नहीं मिलती है तो कहते हैं मुसाफरनु बाळक दाव माता ने आधीन थईने दूध पीवे छे तेम आत्मा कर्म ने आधीन थईने विकार करे छे। कोई कर्म के निमित्त विकार करावे छे एम नथी। आ तो स्वाश्रय स्वाधीनपने निराकुळ आनंद ने यथेष्ट भोगो तो धर्मी पुरुष तेने जे किंचित राग छे ते कर्मोदय ने आधीन थवा नथी पराधीन पने थेल छे। इसलिए ईश्वर ने से वो वैसा है, कर्म के कारण से इसमें राग हो रहे हैं। एम ते जाने छे एम वाच छे। यहाँ ये बताया जा रहा है कि आत्मा में जो विकारी परिणाम हो रहे हैं वो कर्म के निमित्त से हो रहे हैं और उसको उपचार से कहे कि कर्म ही उसको कराता है इसलिए वो पराधीन है। आई कहे छे प्रकृति पण आत्माना विकारी परिणामना निमित्ते उत्पत्ति विनाश ने पामे छे। कर्म प्रकृति बंद भावे तो पोताथी परिणमे छे। त्यां ते काळे आत्माना मिथ्यात्वादी परिणाम तेमा निमित्त छे। बस निमित्त छे माटे कर्म प्रकृति बंद रूपे परिणमे छे एम नथी। आत्माना परिणाम तो निमित्त मात्र छे। आ प्रमाणे आत्मा ने प्रकृति ने परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव थी बन्ने ने बंद जोवामां आवे छे। पण त्यां बन्ने ने करता कर्म भाव नो अभाव छे। निमित्त नैमित्तिक संबंध छे। शुं कीधुं? प्रकृति एटले कर्मोदय करता अने आत्माना विकारी भाव तेनुं कर्म तथा आत्मा ना विकारी भाव करता ने प्रकृति बंद थाय ते तेनु कर्म एम परस्पर यानी परस्पर यानी जीव के विकारी परिणाम और वहां कर्म इनमें कर्ता कर्म भाव नो अभाव छे। आत्मा क्रमबद्ध उपजता विकारी भाव पने उपजे छे त्यारे कर्मोदय ने निमित्त छे। अनेक प्रकृति क्रमबद्ध उपजता बंद भावे उपजे छे त्यारे आत्माना विकारी भावे ने निमित्त थाय छे। यहां क्या बात बताते? क्रमबद्ध तो दोनों ही परिणाम हो रहे लेकिन उसमें निमित्त परस्पर है। बस आवा परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव थी बन्ने ने बंद थाय छे। भाई जे कोई कर्म एटले कार्य निभजे तेमा बीजी चीज निमित्त हो पण निमित्त थी नैमित्तिक कार्य थयुं छे एम त्रण काळमां सत्य नथी। जीवमां जे विकार थाय छे ते निमित्तने आधीन थईने परिणमवाथी थाय छे पण निमित्त थी नहीं। बीजी चीज निमित्त हो पण बीजी चीज करता नथी। जीव जारे विकारी भावे परिणमे छे त्यारे नवा कर्मनो बंध थाय छे। ते बंधमां जीवना विकारी परिणाम निमित्त छे पण विकारी परिणाम कर्म बंधना करता नथी। कितनी बार उसी को अलग अलग तरीके से समझाया है। आ प्रमाणे परस्पर कर्ता कर्म नो अभाव छे छता परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव थी आत्मा अने प्रकृति ने बन्ने ने बंध जोवामां आवे छे। ते आ प्रमाणे आत्माना विकारी परिणाम ते भाव बंध अने तेमा प्रकृति एटले कर्म निमित्त छे अने जड़ कर्म प्रकृति बंधाय ते द्रव्य कर्म तेमा जीवना विकारी परिणाम निमित्त। यहाँ क्या बताए? बंध की कितने भेद बताए? हाँ रश्मि बहन, दो कौन कौन से? हाँ अभी वो जो एक मिनट हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जीव के जो विकारी परिणाम है ना, वो किसमें बंधते हैं? जीव के विकारी परिणाम, उसको भाव बंध बताया ना आपने, तो वो बंध किसका किसके साथ होता है? हाँ, और द्रव्य बंध में, द्रव्य बंध में किसका बंध किसके साथ होता है? हाँ, और जीव का कर्म प्रकृति के साथ वो भाव बंध है। हाँ, नलिन भाई आप कुछ बताएंगे? किसके साथ बंध होता है उसका? मैं रुक गया इसलिए कि मुझे मालूम था। हाँ बोलो साहब। हाँ, वो जीव की जो पर्याय है विकारी परिणाम है ना, तो जीव का विकारी परिणाम जिसको हम भाव बंद कह रहे हैं, वो भाव बंद होने के लिए दो चीज चाहिए ना भाई, तो दूसरी चीज कौन है, ये हमारा प्रश्न है। अरे वो तो निमित्त है। देखो बंद होना है ना, देखो हम किसी को मिलने गए, भेटा किया, तो भेटा करने के लिए सामने कोई व्यक्ति चाहिए कि नहीं? हाँ, तो प्रकृति देखो आपका ऐसा कहना है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, उसमें कुछ तब्दीली होगी तो बताना। आप कह रहे हैं कि जीव के विकारी भाव और कर्म के साथ मिलान होता है तो वह भाव बंध, और कर्म का जीव के साथ बंध होता है वो द्रव्य बंध, ऐसा ही आप कह रहे हैं ना? क्या और कुछ है डॉक्टर, आप बताए? आप बताए। हाँ सुनो, हम सात तत्व सीखे हैं ना, तो सात तत्वों में हमने बंध दो प्रकार के देखे, द्रव्य बंध और भाव बंध। तो वो भाव बंध किसका किसके साथ होता है, ये मेरा प्रश्न है। अभी मैं और सबको कंफ्यूजन है इसलिए मैं इस बताना चाहूंगा। हाँ, आप बराबर है। हाँ देखो मैं बताता हूँ, भाव बंध किसको कहना, शुभाशुभ विकारी भावों में अटकना, यानी वो भाव बंध कहा है। और द्रव्य बंध किसको कहते हैं, पुराने कर्मों में नए कर्म का बंध होना। बेन, और आप परस्पर बता रहे, वो तो परस्पर निमित्त है। हा? देखो फिर से यहां पढ़ते क्या है, आत्माना विकारी परिणाम, वो विकारी परिणाम में जीव अटक रहा है ना, बार बार वही कर रहा है, तो वो भाव बंध कहेंगे। इसलिए जीव के विकारी परिणाम और जीव के विकारी परिणाम उसी में वो होना, वह भाव बंध है। तेमा निमित्त कौन छे, तो प्रकृति निमित्त छे, है ना? तो आप जो बोल रही थी कि जीव का भाव और प्रकृति का बंध, ऐसा नहीं है, वो तो उभय बंध में जाएगा अगर आप दोनों के लेंगे साथ में। तो ये तो भाव बंध, और द्रव्य बंध यानी क्या, कर्म प्रकृति का कर्म प्रकृति के साथ बंध होना, यानी हमारे पास जो स्टॉक में कर्म प्रकृति है, हमने नई बांध दी, कहाँ रहेगी वो, पुराने के साथ जुड़ जाएगी ना, तो उसको द्रव्य बंध कहेंगे। तो क्या कहा, कर्म जड़ कर्म प्रकृति बंधा है, ते द्रव्य बंध, तेमा निमित्त कौन छे, तो जीवना विकारी बनना। हाँ साहब, बात समझ में आ रही है? बस आटली बात छे, पुस्तक छे सामे, तो के जो एम के छे। स्वामी जी भी ठोक देते हैं। देखो एमा, देखो હવે આવું યથાર્થ ભાવ ભાષણ ન થાય તો બાપુ ભેદ જ્ઞાન કેમ થાય? અને બિના ભેદ જ્ઞાન ધર્મ કેવો? રાગાદી વિકારી પરિણામ છે તે ભાવબંધ છે અને તે નવો દ્રવ્યબંધ થવામાં નિમિત્ત છે બાપુ. એ કઈ ધર્મના કારણરૂપ અબંધ પરિણામ નથી. યાને ક્યા અર્થ હુઆ? રાગ સે ધર્મ હોતા નહીં, રાગ કરતે કરતે વિતરાગ દશા પ્રાપ્ત નહીં હોગી. કિશ્વર સે નિકાલા? એ કઈ ધર્મના કારણરૂપ અબંધ પરિણામ નથી તો રાગથી બંધ થવાના જ છે એમ કે છે. અબંધ પરિણામ તો કેમ થાય ઉત્પન્ન? તો અબંધ સ્વરૂપી ભગવાન આત્માના એટલે સ્વના આશ્રય થાય છે અને તે મોક્ષનો માર્ગ છે. અગર હમે અબંધ પરિણામ કરને હૈ તો ક્યા કરના પડેગા? જો મેં સ્વયં અબંધ સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા હું, ઉસકા યાને મેરા આશ્રય લેને સે વો અબંધ અવસ્થા આયેગી, દશા આયેગી અને તેજ મોક્ષનો માર્ગ છે. કર્મ પ્રકૃતિના ઉદયના નિમિત્તે વિકારી ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે તે ભાવબંધ છે અને ભાવબંધ છે તે નવી કર્મ પ્રકૃતિના બંધમાં નિમિત્ત છે. મેને જો પ્રશ્ન પૂછા તા ને ઉસકા યહાં ઉહાપોહ નહીં હૈ, યે તો નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ કી હી બાત બતા રહે. આ પ્રમાણે આત્મા અને પ્રકૃતિનું પરસ્પર નિમિત્ત નૈમિત્તિક ભાવથી પ્રણમવું છે અને તેથી સંસાર છે. એનાથી જીવ ચાર ગતિ અને 84 લાખ યોનીમાં રૂલે છે અને તેથી જ તેમને કરતા કર્મનો વ્યવહાર છે. નિશ્ચયથી તો તેમને કરતા કર્મ સંબંધ નથી. પ્રત્યેક પદાર્થની તે કાળે જે જે પર્યાય ક્રમબદ્ધ થવાની હોય તે જ થાય છે. પહેલે તો હમે એ વાત નિશ્ચિત રૂપ સે ધ્યાન મેં રખની હૈ કે એ જીવ કે જો કુછ વિકારી પરિણામ હો રહે હૈ ઓર કર્મ કા જો કોઈ બંધન રૂપ કાર્ય બન રહા હૈ, ઇન દોનો મેં નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ હૈ પણ કરતા કર્મ સંબંધ નહીં. યાને જીવ કરતા ઓર કર્મ ઉસકા કાર્ય, યા જીવ કરતા કર્મ કરતા ઓર જીવ કે પરિણામ ઉસકા કાર્ય, એસી બાત નહીં હૈ, કર્મ નહીં હૈ વો ઉસકા. તો કહેતે નિશ્ચયથી તો તેમને એટલે જીવને અને પ્રકૃતિને કરતા કર્મ સંબંધ નથી. પ્રત્યેક પદાર્થની તે કાળે જે જે પર્યાય ક્રમબદ્ધ થવાની હોય તે જ થાય છે. એ તો અમને પહેલે 4 ગાથાઓ અમે દેખ કે આયા હમ. તેને પરદ્રવ્ય નિમિત્ત તો શું સ્વયં સ્વદ્રવ્ય આત્મા પણ આગળ પાછળ કરી શકતો નથી. કોને આગળ પાછળ કરતો નથી? જે પર્યાય છે, જે ક્રમબદ્ધ છે તે પર્યાય. તો કોક તો પર્યાય એવી હશે ને વિધાઉટ ક્રમબદ્ધ, તો કે ના ના ના, બધી પર્યાયો જે સમય થવાની તે જ સમય થવાની. તો એ પરદ્રવ્ય તો જવા દો એમ કે સ્વયં આત્મા પોતે સ્વદ્રવ્ય પણ એને આગળ પાછળ ન કરી શકે. પરંતુ ક્રમબદ્ધ વિકાર જીવને થાય છે તેમાં જૂના કર્મ નિમિત્ત છે અને વિકારના નિમિત્તે નવા કર્મનો બંધ થાય છે. આવા નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધના કારણે તેમને કરતા કર્મનો વ્યવહાર છે. વ્યવહારથી એને કરતા કર્મ કહેવામાં આવે છે પણ તે પરમાર્થ નથી, એટલે તે સાચી વાત નથી એમ યથાર્થ સમજવું. સમજાણું કાંઈ? યહીં હમ રુકેંગે અભી. જાવાની કે જ્ઞાન સે સુજે લો કાલો સોવાણી મસ્તકણમો સદા દેત હોળો. લક્ષ્મી બોલો.